बहुत समय पहले किसी एक राजा ने कहा था कि मुझे शांति का चित्र कोई बना कर दे, कोई एक ऐसा चित्र हो कि जिसमें शांति झलकती हो। सारे देश भर में उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें देखते ही मन शांत हो जाए, तो ऐसे चित्रकार को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत सारे चित्र आते हैं, उसमें से दो चित्र चुने जाते हैं। पहला जो चित्र होता है वो देखते ही जैसे किसी का भी मन शांत हो जाए। समुद्र है, पहाड़ है, शांत आकाश है, पंछी उड़ रहे हैं, कोई कहीं पर भी हलचल नहीं है, संपूर्ण स्थिरता है, तो उस चित्र को चुना जाता है और राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा कहते हैं हाँ यही चित्र है। पर एक दूसरा भी चित्र होता है, उस चित्र में तूफान है, उस चित्र में समुद्र है, परंतु जोर से जैसे उसमें उफान पर है, नदी का भी यही हाल है, पंछी है जो इधर उधर उड़ रहे हैं, बादल है, तेज बारिश सी हो रही है, आवाज है, बिजली कड़क रही है कहीं पर। इस चित्र को भी चुना जाता है। राजा को आश्चर्य होता है, इस चित्र में शांति कहाँ है, यह तो अशांति का चित्र है। परंतु वो जो चित्र होता है अशांति का, उसमें राजा गौर से देखता है कि एक झरना है बहुत तेज जो बह रहा है, वहीं पर एक झाड़ भी है और उस झाड़ के पास एक पंछी का घोंसला है। चारों ओर हलचल है परंतु वो पंछी शांत बैठा हुआ है बिना किसी हलचल के, और इस चित्र को चुना जाता है। द बेस्ट पिक्चर ऑफ पीस। शांति का यह अर्थ नहीं कि संपूर्ण वातावरण में शांत है तब हम शांत हो। शांति अर्थात चारों ओर हलचल, चारों ओर हंगामा, आज के वरदान से चारों ओर झगड़े, चारों ओर आवाज, चारों ओर शोरगुल, खलबली मची है संसार में, ऐसा वातावरण और जिसमें हम शांति कुंड, जिसमें हम शांत स्वरूप, जिसमें हम शांति की शक्ति फैला रहे हैं, क्या इतना हमने स्वयं को शांत कर दिया है? दिखाया है इतिहास में जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, मूसा, और इस तरह के बहुत सारे धर्म पिता लंबा लंबा समय अपने जीवन में एकांत में रहे। किससे बात कर रहे थे उस एकांत में? क्या कोई शास्त्र पढ़ रहे थे? क्या जीसस क्राइस्ट उस 40 दिनों में कोई शास्त्र पढ़ रहे थे? क्या मोहम्मद पैगंबर उस गुफा में जाके शास्त्र पढ़ रहे थे? क्या महात्मा बुद्ध शास्त्र पढ़ रहे थे आफ्टर एनलाइटनमेंट? शायद नहीं, परंतु स्वयं को संसार और भीड़ के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, स्वयं को शांत करने का प्रयत्न कर रहे थे। व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक जो भी करता है, भीड़ का उस पर प्रभाव होता है, भीड़ की मेंटालिटी उसके मन पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ती है और वो उसी के आधार पर कार्य करता है। भीड़ हलचल में तो हम हलचल में, भीड़ शांत तो हम शांत, भीड़ पाप करे तो व्यक्ति पाप करने से नहीं रुकता, वो भी कर देता है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था और आग लगी थी और तोड़फोड़ हुई थी, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो रोज गीता पढ़ते थे और रोज कुरान पढ़ते थे, जो रोज मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे। वो अकेले होते तो शायद ना करते, परंतु सारी भीड़ कर रही है तो उसमें वो भी शामिल हो जाते हैं। क्या हमने स्वयं को संसार के और इस भीड़ के और इस अशांति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने की साधना आरंभ की है? वही हमारे ज्ञान योग की पराकाष्ठा होगी। वरदान में कहा है, चारों ओर हंगामा, झगड़ा और तुम शांत स्वरूप, और तुम शांति कुंड। केवल इतना ही नहीं, तुम स्वयं शांति कुंड और दूसरों को अपने शांत स्वरूप का अनुभव कराओ, दूसरों को शांति कुंड का अनुभव कराओ, अपनी शांति की शक्ति फैलाओ, शांति की शक्ति का प्रत्यक्षता की प्रत्यक्षता करो। इतना बड़ा लक्ष्य है। क्या आत्मा स्वयं इतनी शांत हो गई है? आनंद ने कभी महात्मा बुद्ध से पूछा था, 40 साल तक वो साथ रहा, और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि आप जिस करवट पर सोते हो रात, सुबह वैसे ही होते हो, रात में जरा भी नहीं हिलते, हाथ ऐसा रखा है तो ऐसा ही रहता है सुबह भी, क्या आप सोते समय भी जागते हो? हमें तो पता ही नहीं चलता, सोते इधर से और उठते किधर से, इतने बदल देते हैं पोजेस। तो महात्मा बुद्ध बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैंने अपने मन को इतना शांत कर लिया है कि अब मुझे करवट बदलने की आवश्यकता ही नहीं। करवट तो वो बदलते हैं जो अशांत है। रात रात भर इधर उधर, उधर इधर, अनिद्रा, हलचल, बेचैनी, इंटरनल अपहीवल, आंतरिक हलचल। एक साधना जो स्वयं को सबको करनी है वो है बीच बीच में एकांत में चले जाना, बीच बीच में सारी हलचल से, सारी आवाज से, सभी लोगों से कुछ समय के लिए अकेला एकांत। कुछ घंटों के लिए भी कोई एकांत में चले जाए और कुछ घंटों के लिए भी स्वयं को सब अशांति से कट ऑफ कर दे और शांत कर दे, पावर जमा होगी। फिर उस पावर के साथ कर्म क्षेत्र में उतरना। आज सुबह भी साकार मुरली में बाबा ने कहा, अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, विचार सागर मंथन करो, परंतु दिन भर में तो तुम्हें कर्मयोग करना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कर्मयोग नहीं करूंगा, सारे दिन भर में कर्मयोग, परंतु उस कर्मयोग करने की शक्ति जो मिलेगी अमृत वेला मिलेगी। तो ये आज के वरदान में बाबा ने कुछ बातें कही। तो आज की मुरली, आज की इस भट्टी की शुरुआत हम एक टॉपिक से करेंगे, शायद आपको बताया होगा, मरना तेरी गली में और जीना भी तेरी गली में। 1952 में कौन सी फिल्म थी? शबाब। 1952 में शबाब हिंदी फिल्म का ये गीत उस समय हमारे अपने कोई गीत नहीं थे यज्ञ के, तो जो गीत संसार के बजते थे वही प्ले होते थे और मुरली पूरी की पूरी उस गीत पर चलती थी। 1962 में किसी बहन ने ब्रह्मा बाबा को आकर सुनाया कि बाबा दो फिल्में रिलीज हुई है, मैं चुप रहूंगी और अनपढ़। तो उस दिन फिर साकार मुरली चली थी। माता है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छा ही है नहीं पढ़ी लिखी है, जो पढ़ी लिखे हैं उनको तो भूलना पड़ेगा, जो अब तक तुमने पढ़ा है सब भूल जाओ, और तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं चुप रहूंगी। अपनी स्थिति से ही तुम प्रभाव डालो। तो उस साकार मुरली में ये दोनों फिल्मों की का जिक्र बाबा ने किया था। मरना तेरी गली में और जीना भी तेरी गली में, आज सुबह की साकार मुरली। परवाने कौन है जो फेरी लगाने वाले नहीं, जो जल मरते हैं, फिदा हो जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, ऐसे बच्चे बाप को प्रिय है। प्रफुल्लित वो रहते हैं जो जो फिदा हो जाते हैं, आनंदित वो रहते हैं जो समर्पित हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं, ऐसे जो अर्पित आए, समर्पित आए, बलिदान, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कोई कोई है जो फेरी लगाकर चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कभी नरेंद्रनाथ से पूछा था कि तुम क्या करना चाहोगे। एक कप है जिसमें कुछ जल है, तुम उस मक्खी की तरह रहना चाहोगे कि जो उस कप के इर्द गिर्द घूमती है, या फिर ये जो कप में जो पदार्थ है, पेय है, ड्रिंक है, उसमें डूबना चाहोगे। तो वह उत्तर देता है कि मैं बाहर से थोड़ा घूमना चाहूंगा, अंदर मैं नहीं डूबना चाहता। वो कहता है तुम डूबना क्यों नहीं चाहते। वो कहता है डूब जाऊंगा तो मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्यों मैं डूबू। वो उसको कहते हैं ये जो डूबना है, बिकॉज दिस इज द ड्रिंक ऑफ इटर्निटी, इसमें जो डूबता है वो डूबता नहीं है, वास्तव में वो जिंदा होता है। जीसस क्राइस्ट उस महिला को कहते हैं समारिया में कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। वो महिला कहती है कि नहीं, मैं कैसे दूं आपको पानी, मैं शूद्र जाति की हूं। वो कहता है तुम मुझे पानी दो, एंड आई शैल गिव यू दैट ड्रिंक, दैट वाटर, दैट यू विल नॉट बी थर्स्टी अगेन, बिकॉज दिस इज द वाटर ऑफ इटर्निटी। ये जो जल है, ये जो समुद्र है, ये अनंत समुद्र है, इसमें जो डूबता है, इसमें जो समा जाता है, वो वास्तव में डूबता नहीं है, वही जीता है। महफिल में शमा चल उठी है और रूहानी परवाने अर्थात जो इस शमा पर मिट जाए। तो दो चीजें हैं, एक है मरना तेरी गली में और दूसरा है जीना भी तेरी ही गली में। मरना तेरी गली में अर्थात एक है स्थूल मरना, एक है सूक्ष्म मृत्यु, सटल डेथ, ग्रॉस डेथ। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, द्विज अर्थात जिनका पुनर्जन्म हुआ है, द्विज अर्थात जिसने नया जन्म लिया है। Thou shalt not enter the kingdom of God unless and until you take second birth. Unless and until you are reborn, यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. फिर से जन्म लेना पड़ेगा. ये फिर से जन्म लेना अर्थात नया जन्म, जिसको बाबा कहते हैं मरजीवा जन्म. जब मरजीवा जन्म होता है तो इस जीवन में फिर पुरानी कोई बात नहीं रहती. आने वाले कल की मुरली, कुमारियों से मुलाकात, कुमारी अर्थात अब पुरानी कोई बात नहीं रही. जैसे वो इस जीवन की बात ही नहीं, किसी और जीवन की बातें हैं, इस जीवन की नहीं है. जीवंत मृत्यु जिसको कहते हैं, जी रहे परंतु यहां की बहुत सारी चीजों से जैसे मर चुके हैं, क्योंकि आंतरिक पुनर्जन्म हुआ है. हम वो नहीं देख रहे जो संसार देख रहा है, हम वो नहीं सुन रहे जो संसार सुन रहा है, हम वो नहीं कर रहे जो संसार कर रहा है. हमारा सब कुछ दिव्य है, अलौकिक है. इस भाव में स्वयं को पूर्ण रूपेण स्थित कर देना अर्थात लिविंग डेथ. एक ऐसा ही उदाहरण दिखाया है वर्धमान महावीर के जीवन में. तीव्र वैराग था, संसार को छोड़कर संन्यास लेना चाहते थे. मां से कहा, मां ने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तो असंभव है, तुमको इधर ही रहना पड़ेगा. उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुप हो गए, वेट किया. ऐसा कम होता है. दो मत है, श्वेतांबर और दिगंबर. दिगंबर कहते हैं कि उन्होंने कभी शादी नहीं की. श्वेतांबर कहते हैं शादी की, बच्ची हुई और बाद में वैराग संन्यास लिया, वो दूसरी बात है. परंतु मां ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम जा नहीं सकते, तो वो रुक गए. बाद में मां ने शरीर छोड़ दिया तो वो तैयार हो गए संसार को छोड़ने के लिए. परंतु भाई था, भाभी थी, उन्होंने कहा तुम कहां जा रहे हो, हम हमारे होते हुए हमारे साथ ही रहो और हमारी साथ काम करो, सब कुछ करना पड़ेगा तुमको, तुम ऐसे नहीं जा सकते. तब भी कोई विरोध नहीं किया, शांति से वहीं बैठ गए. परंतु दिखाया है उसके बाद का जो जीवन है, जैसे वो है ही नहीं. उनके साथ है, भाई के साथ उनके घर में रह रहे, परंतु जैसे वहां है ही नहीं. और उनकी यह अवस्था देखकर कुछ ही समय में वो लोग सोचने लगे, ये वैसे भी हमारे कुछ काम का ही नहीं है, क्या करें, तुमको जाना है जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम हो ही नहीं, तो क्या फायदा है, चाहे रहो या न रहो. इतना आंतरिक वैराग. तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे यहां रहते हुए, जीवंत रहते हुए जैसे हम मर चुके हैं, ऐसी 10 बातें हैं, परंतु जैसे अब वो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारा अब मरना उसकी गली में. उसके एक अर्थ यह भी है कि इन सभी चीजों से हम मर गए हैं. दूसरा, अब जो कुछ होगा वो उसके साथ होगा, जीना भी और मरना भी, ये एक दूसरा अर्थ है. और कोई जगत नहीं, और कोई संसार नहीं. तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे हमें इस जीवन में मर जाना है, जैसे अब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जैसे अभी उसकी हमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ना ही उसका डिटेल्स हमको चाहिए, ना ही उसके विषय में कोई क्यूरियोसिटी है, क्योंकि इसी क्यूरियोसिटी ने मनुष्य का पतन किया है. अभी कल परसों हम एक बहन से बात कर रहे थे विदेश की, उसने बहुत अच्छी बात बताई. इट इज दिस क्यूरियोसिटी दैट हैज लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मैन. द्वापर से व्हाट इज बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हाट इज दिस अट्रैक्शन, व्हाट इज दिस लस्ट, ये इच्छा जानने की इच्छा ने ही व्यक्ति को नीचे गिराया है। सत्युग त्रेता में आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, यहां से कुछ और हो गया, देह अभिमान आ गया, दैहिक आकर्षण उत्पन्न हुआ और आत्मा गिरने लगी। आज सुबह की साकार मुरली में सुंदर महावाक्य है, जो पावन निर्विकारी नहीं, जो पावन निर्विकारी है वही, उसी को कहा जाएगा बाप को फॉलो करते हैं, जो पावन निर्विकारी नहीं वो बाप को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है देह का भान, देह का अभिमान और देह का अहंकार। एक है भान, एक है अभिमान, एक है अहंकार, तीनों में क्या अंतर है? यह एक ही है, क्या कहेंगे? क्या अंतर है? इंटेंसिटी का अंतर है एक तो, और स्मृति का। एक है देह का भान, सबसे सूक्ष्म है देह भान, थोड़ा उसके ऊपर इंटेंसिटी, उग्रता, तीव्रता जिसकी जाता है वो है देह अभिमान, और तीसरा है देह अहंकार। अहंकार अर्थात मैं ये हूं, मैं वकील हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं या कोई पद पर हूं, उस पद का अहंकार जिसमें घमंड है, एकदम इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, उसको कहा जाता है देह अहंकार। एक अच्छी बात तो नहीं है, पर हमको याद है हम जब इंटर्न थे बहुत समय पहले, तो हमारे एक डॉक्टर थे, वो पेशेंट के बेड के ऊपर पैर रखकर बात करते थे, और पहले उसको ये सुनाते थे मेरे पास डिग्रियां कौन कौन सी है, और फिर बोलते थे अब बोलो क्या तकलीफ है। देह अहंकार कि जिसमें व्यक्ति समझता है मैं ही मैं सब कुछ हूं, बस ये सब तो चिल्लर कुछ भी नहीं है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेन कैंप एडॉल्फ हिटलर, प्रश्न पूछा था आप इतना निर्भय होकर कैसे भाषण करते हो, क्या राज है, डर नहीं लगता, ऐसे क्रांतिकारी क्या क्या बोल देते हो? तो कहता था जब मैं बोलता हूं तो मैं ये समझता हूं मेरे सामने भेड़ बकरियां है, चिल्लर है सब, ऐसा देखता हूं मैं इनको, एकदम तुच्छ, जो जैसा होगा वैसा ही देखेगा। अहंकार पराकाष्ठा पर है, एंड प्राइड हैथ इट्स फॉल, अहंकार गिरेगा, वो है देह अहंकार। फिर है देह अभिमान, देह अभिमान है विशेषताओं का अभिमान, मुझ में ये है, मैं लिखता अच्छा हूं, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं ये सेवा अच्छा करता हूं, दूसरे और कोई ये सेवा नहीं कर सकते, यदि हमको उस सेवा नहीं दी गई तो हम तो चले जाओ जाकर हम देखेंगे जो करना है करो, देखते हैं हमारे बगैर ये सेवा कैसे करते हो, हमारे कॉन्टैक्ट ज्यादा है और हमको इन्वॉल्व नहीं किया, हम चले जो करना है करो। सूक्ष्म विशेषताएं, स्पेशलिटीज, हुनर, स्किल्स, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी का अहंकार, मैं कर रहा हूं, मुझे आता है, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, और कोई करे तो उसमें दोष निकालना, पहले ही कहा था ये सेवा मेरी है, ये किसको रख दिया, हो गई ना गड़बड़। और सबसे सूक्ष्म है देहभान, आज की मुरली साकार, आत्मा ना मेल है ना फीमेल, शिव बाबा ना मेल है ना फीमेल, जब बोलते हो तो ऐसे बोलो किससे बात कर रहे हो, चाहे बहन हो, शायद भाइयों के लिए कहा है ये, कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। बाप इंजेक्शन लगाते हैं जिससे देह अभिमान टूटता है। सबको आत्मा देखना, स्त्री देखना, पुरुष देखना, आत्मा निर्लिंग है, अलिंग, सेक्सलेस, और व्यक्ति इस भान में रहता है। पर 10 साल पहले मधुबन के आंगन में यदि आपने किसी को एक गिफ्ट दी, ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको उसका नाम याद है, आप कहेंगे नहीं, नाम याद नहीं, उसका चेहरा, चेहरा याद नहीं है, वो कहां से था वो भी याद नहीं। अच्छा, ये बता सकते हो स्त्री थी या पुरुष? हां, वो याद है, ये नहीं भूलता है कि वो स्त्री थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो बहन ही थी जिसने ये दिया था। क्या ऐसा होता है ये बहन थी या भाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये कम होगा। ये जो भाव है इतना गहरा है बैठा हुआ, इससे बाहर निकलना आज की मुरली में भारी मंजिल है। एक जगह कहा है बाबा ने, ये भारी मंजिल है। तो सबसे पहली चीज जिससे मरना है और विधि है, पहले जान लेना कि ये मुझ में है। एक है जिसका पता ही नहीं मुझ में है और वो है, दूसरा एक व्यक्ति है जो अहंकारी है पर उसको पता है मुझ मेरे में अहंकार है और वो एक दिन मुक्त हो जाएगा, पर दूसरा है जिसमें अहंकार भरा है परंतु उसको कोई खबर नहीं है उस अहंकार की, ये एक दूसरा व्यक्ति है। हमें अपने ईगो का ज्ञान हो कि मैं इस बात में अहंकारी हूं, इतना भी हो जाए तो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाएंगे। तो पहला है देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, इससे मर जाना। दूसरा है देह के संबंध, व्यक्ति संबंधों में फंसा रहता है। भागवत में एक जगह कहानी है कि एक राजा है, रानी है, पुत्र नहीं है, बहुत दुखी है। नारद मुनि जा रहे हैं, कहते हैं हमें कुछ भी करके पुत्र चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, पुत्र तो है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में। वो कहते हैं नहीं, कुछ भी करो। तो वो कहता है ठीक है, पुत्र तो होगा पर वो अल्पायु होगा, परंतु होगा यही बात राजा की बुद्धि में समा जाती है, वो अल्पायु होगा वो भूल जाता है। और कुछ समय के बाद पुत्र होता है और इतनी खुशियां कि वो पूरा दुख इतने सालों का भूल जाता है जैसे ही बच्चा घर पर आता है, और कुछ ही महीनों में वो बच्चा मर जाता है। इतना दुख, इतना दुख, इतना विलाप, इतना विलाप, इतना विलाप। तो वो फिर देखता है नारद जा रहा है और उसको कहता है कि तुमको देना ही था तो क्यों दिया फिर, जब इसको मारना ही था तो देना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ही वैसी बहुत सारी बातें करता है। अब उसको मुझे वापस चाहिए। तो नारद तो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो ज्यादा नहीं जिएगा, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं उस आत्मा को वापस बुलाता हूं, और दिखाया है कि वो आत्मा वापस आती है और उसको कहते हैं इनको पहचाना, मां बाप को। तो वह आत्मा कहती है कौन से मां बाप है, कौन है ये, किस जन्म के मां बाप है मेरे, मैंने इतने जन्म लिए, इतने जन्म में इतने मां और इतने बाप हुए हैं, उनमें से ये दोनों कौन है, वो आत्मा पूछती है जिसको बुलाया जाता है। इसी तरह आत्मा ने अनगिनत जन्म लिए हैं, हर जन्म में कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मां बाप कुछ ना कुछ बना है। ये समय है उस देहभान, देह के संबंधों को तोड़ने का। उसके बाद ही यात्रा चालू होती है अध्यात्म की। जब तक व्यक्ति इस सर्कल के बाहर नहीं निकलता, हां उनकी सेवा करना, संभाल करना, तोड़ निभालना, संबंध निभाना, जहां जन्म लिया है वो सब करना, वो सब ठीक है, परंतु उसमें फंस के नहीं रहना है। आत्मा धीरे धीरे उन सब से बाहर निकल जाए, उनको भी आत्मा देखिए, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, और ये सब आत्माएं एकत्र हुई है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और मुझे जाना है। तो देह के संबंध, सेवा करना अलग चीज है, परंतु तोड़ निभाने के नाम में अपने मोह को पोषण नहीं करना है, अपने मोह का। बाइबल में लिखा है एक जगह, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही हु लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक भाई बहन को मेरे से अधिक प्रेम करता है मेरे लायक नहीं है, जो अपने लौकिक मां बाप को मेरे से अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। आई डिजर्व द मोस्ट अटेंशन। आत्मा संबंधों में फंसी रहती है और कोई भी संबंध उसको तृप्त नहीं कर पाता। एक संबंध में फंसती है, वैराग आता है दूसरे संबंध में, फिर तीसरे संबंध में, एक स्त्री दूसरी स्त्री, तीसरी तीसरी स्त्री, एक पुरुष दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, संबंध कोई भी हो, बाप के संबंध से निकलकर कभी बच्चे के संबंध में फंसती है, कभी पति के संबंध में, यही चक्र सारा जीवन चालू रहता है और उसे छूट नहीं पाती है। इसके लिए परमात्मा से संबंधों का अनुभव भी नहीं होता है। तो स्वयं को थोड़ा सा अलग करना है। तीसरा है देह के धर्म। देह के धर्म, देह के धर्म, जिस घर में जन्म लिया है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ब्राह्मण, उसका भी ज्ञान में आने के बाद भी अहंकार चलता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम लौकिक में ब्राह्मण हैं। बहुतों को ये नहीं है, परंतु हमने ये देखा है कई सारे बीकेस, ये भी अहंकार होता है और ये साथ साथ चलता है ज्ञान में आने के बाद भी। रिलीजन का एक धर्म तो होता है ये, दूसरे कुछ शरीर के भी धर्म है, और वो लोग कहते हैं कि ये जिनको सतयुग का कोई अनुभव नहीं उनके लिए विकार ये धर्म है। आज की मुरली में शुरुआत में ही बाबा ने कहा है, जो इस देवी देवता धर्म के है वही भूल गए तो बाकियों की तो बात ही कुछ और, बात ही क्या पूछे दूसरों की, जो इस धर्म के है वही भूले हुए हैं। और विकार को देह का धर्म समझना ये बहुत बड़ी भूल है। तो तीसरा है देह के धर्म, चौथा है देह की भाषा। जिस घर में हमारा जन्म होता है उस भाषा से बहुत प्यार होता है। हम देखते हैं मधुबन में जैसे ही दो व्यक्ति मिल जाते हैं और दोनों एक ही राज्य के अपनी भाषा बोलना चालू कर देते हैं, दो पंजाबी मिल जाए, दो मराठी मिल जाए, दो बंगाली मिल जाए, दो साउथ वाले कोई मिल जाए, जैसे कि अपना ये ग्रुप बन गया दो लोगों का या चार लोगों का। ब्रह्मा बाबा के जीवन में है कि बाबा शरीर में आने के बाद उन्होंने सिंधी का बहुत कम या ना के बराबर प्रयोग किया, हमेशा हिंदी। उस अवस्था से नीचे आना और फिर ढूंढ लेना किसी को अपने जगह का या अपनी भाषा वाला, ये बेहद से हद में आना है। उसी के साथ जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है देह का स्थान। कल की जो अव्यक्त वाणी चलने वाली है उसमें बाबा ने एक बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा है। बाबा ने कहा है कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने कहा, हर एक ये कहता है मेरे घर वालों का बच्चा ज्ञान में आ जाए, पति ज्ञान में आ जाए, इसकी बुद्धि का ताला खुल जाए। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने कहा मेरे देश का, मेरे गांव का ताला, बुद्धि का ताला खुल जाए। सबने यही कहा है कि इसका खोल दो, उसका खोल दो, इसका कल्याण कर दो, उसका कर दो, मेरा 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 मेरा, मेरा पति, मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनका कल्याण कर दो। ऐसा कोई नहीं कहता कि मेरे देश का कल्याण कर दो। ये भी एक बंधन है। भारतीय होना बहुत अच्छी बात है और भारत का गर्व होना बहुत अच्छी बात है। बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा था, बाप भारत का दीवाना है परंतु हम बेहद के हैं, किसी एक देश में भी फंसने वाले नहीं। यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो कौन जीतना चाहिए बताओ? क्यों, विश्व कल्याणकारी है या भारत कल्याणकारी है? सब हमारे हैं ना, पहले तो होना ही नहीं चाहिए। क्या वो हमारे नहीं है? सभी हमारे हैं। विवेकानंद ने एक जगह अपने भाषण में कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल, आई हैव नॉट कम फॉर इंडिया, आई हैव नॉट कम फॉर वन पर्सन, आई हैव नॉट कम फॉर वन फैमिली, आई हैव नॉट कम फॉर वन सोसाइटी, आई हैव नॉट कम फॉर वन स्टेट, आई हैव नॉट कम फॉर वन कंट्री, बट माई इंटरेस्ट आर इंटरनेशनल, सर्वभौम, बेहद, सारे विश्व का कल्याण करना है। ये भी एक बंधन सा बन जाता है कभी कभी। हां, मातृभूमि है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सब हमारे हैं, सब। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये मत समझना मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। तो देह का स्थान। अगला है देह की इच्छाएं। इस देह को जैसे चलाओगे वैसे वो चलेगा, इस देह को जो खिलाओगे उतना वो खाएगा, इस देह की जितनी इच्छाएं जो बढ़ाएगा वो देह और मांग करेगा। और इच्छाओं का स्वभाव है इनसैशियबल, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। पाली भाषा में शब्द है दुष्पूर, इच्छाएं दुष्पूर है, महात्मा बुद्ध ने कभी कहा है। दुष्पूर अर्थात कभी भी न भरने वाली। तृष्णा जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है संसार की, कितना भी पालो। एक व्यक्ति है जो सोचता है मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ठीक है, पर प्रसिद्ध होने के बाद भी इच्छा वही रहती है। वोल्टेयर ने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि पहले मैं प्रसिद्ध नहीं था तो मुझे लगता था सब लोग मुझे जान जाए, वोल्टेयर। फिर वो बहुत प्रसिद्ध हो गया एक दिन, और उधर फ्रांस में ऐसी प्रथा थी कि जो प्रसिद्ध हो जाता था रास्ते से अगर चले तो उसके कपड़े टुकड़ा एक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। उसका चलना मुश्किल हो गया था रास्ते से, क्योंकि लोग पकड़ते थे और उसके कपड़े फाड़ने लगते थे, तो वो पछताने लगा पहले ही अच्छा था मैं तो, अब तो चलना मुश्किल हो गया। एक हवाई जहाज का पायलट जब आकाश में अपना प्लेन चलाता है और एक बार अपने गांव के नीचे से गुजरता है तो ऊपर से देखता है और अपने सेकंड जो होता है को पायलट उससे कहता है, देखो वो तालाब, एक समय था मैं वहां बैठकर मछली पकड़ता था या खेलता था, और वहां बैठकर छोटा जब गांव में था और ऊपर देखता था एरोप्लेन को तो मैं सोचता था कि ऐसा पायलट मैं एक दिन बनूंगा और आकाश में उड़ूंगा, ये एक ही इच्छा थी। और आज जब मैं पायलट बनकर ऊपर उड़ रहा हूं और नीचे देखता हूं तो लगता है कहां गए वो दिन। वही अच्छा है कि कब मैं नीचे जाऊं और वो जैसा था पहले बेफिक्र वैसा बन जाऊं। अभी तो कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस है जीवन में, डर है, इनसिक्योरिटी है, तो जब व्यक्ति नीचे रहता था सोचता है वो बन जाऊं, जब वो बनता है तो सोचता है वापस वही बन जाऊं। इच्छाएं जो है उसके स्वभाव को समझना है। देह की भी इच्छाएं हैं और वो कितने भी कंफर्ट्स और कितना भी उसको दिया जाए वो कम कम ही होते जाता है। उसकी फितरत में ही अतृप्ति है, उसका बाय नेचर इज इट इज इनसैशिएबल। अंडरस्टैंड दिस नेचर, इस स्वभाव को समझना है, नहीं तो संसार में लोग क्या कर रहे हैं, इच्छाएं पूर्ण कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, कोई अंत ही नहीं है उसका। तो देह की इच्छाओं से मर जाना। अगला है देह के भोग, देह के भोग, इंडल्जेंस। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में बहुत सुंदर चीज लिखी है, देर इज लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस बट देर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। किसी को लड्डू पसंद है, कितने खाएगा, 10, 100, लिमिट है उसको। कितना भी पसंद हो लिमिट है, पर सेल्फ कंट्रोल की कोई लिमिट नहीं है। कितना भी दिन अगर चाहे व्यक्ति, खुदीराम बोस 61 डेज प्रिजन में विदाउट फूड, संकल्प पर है। सेल्फ कंट्रोल की कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंस भोग की लिमिट है। खा खा के कितना खाएगा, यह भी समझना है। देह और देह के भोग, जो जितना भोग में डूबा है वो कम देही अभिमानी, जो जितना कम डूबा हुआ है उतना वो ज्यादा देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। तो देह के भोग। फिर है देह के पुराने संस्कार। शरीर को जो आदतें डालो वैसी आदत उसको लगेगी, जो भी। संस्कार कहो या आदत कहो, थोड़ा सा अंतर है, आदतें थोड़ी ऊपर है, संस्कार डीप है, पर दोनों है अवचेतन मन में ही, सबकॉन्शियस माइंड में दोनों भी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करते हैं दोनों भी, हैबिट्स ऑल्सो एंड संस्कार्स। अगर ये सबकॉन्शियस माइंड है और उसके 10 लेयर्स है, तो ऊपर का जो लेयर है सबकॉन्शियस माइंड का हैबिट्स है, और नीचे के जो लेयर्स है वो नीचे की परतें अब संस्कार, पर है दोनों भी अवचेतन में, चेतन में नहीं है, बिकॉज दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। जिस भी चीज की आदत डाल दी वो अपने आप काम करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, अच्छी या बुरी। जिसने अमृत वेले की आदत डाल दी वो अपने आप काम करेगा। आज का है रात में जाग कर कमाई करो, सुबह की मुरली में है ना, जिसने जो आदत डाली वो आदत साथ चलेगी। यदि आत्मा को विकार की आदत है तो उसको वही चाहिए, पाप की आदत है वही चाहिए। जो उसको आदत बनी है, जैसे उसके संस्कार बने हैं, अपने आप कार्य करती है। तो स्वयं की आदतों का निरीक्षण, डिटैच होकर देखना है मेरे क्या क्या संस्कार है, ये संस्कार है। अगर किसी भी संस्कार से मुक्त होना है द फर्स्ट स्टेप इज उसको समझना, एक्सेप्ट करना, हां है ये है। हो सकता है बहुत शर्मदायक है वो, परंतु यदि उससे मुक्त होना है तो फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस, यह है मुझ में, बहुत खराब है पर है। ब्राह्मण परिवार में कलंक लगाने वाला है यदि सबको पता चल जाए तो, बट स्टिल यह है ना, एक्सेप्ट। सोचो कहां यह चालू हुआ, किस व्यक्ति के द्वारा, किस संबंध के कारण, किस समय, ओरिजिन क्या है विकार का, कैसे आया वो, वहां जाकर से ही उसको निकाला जा सकता है। तो कितने हो गए, देह का, देह के पुराने संस्कार। फिर है देह की पुरानी स्मृतियां, ज्ञान में आने की स्मृति, ज्ञान में आने के पहले जो विकार का जीवन रहा हो, या फिर ज्ञान में आने के बाद का विकार का जीवन रहा हो, आने के बाद भी उसकी यादें, अब नहीं है पर वो स्मृतियां है। कल ही हमें एक बहन का फोन आया था, तो उन्होंने कहा मैं अधर कुमारी हूं, और फिर कहा मेरी शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा बताएंगे? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अधर कुमारी है, शादी हुई है आपकी? उसने कहा नहीं हुई है। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि आप अधर कुमारी हो? उसने कहा कि मेरा अफेयर था, इस आधार पर मैंने ये सोचा है कि मैं अधर कुमारी हूं। अभी क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे विकारी स्मृतियां परेशान करती है योग में, अभी बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, रोज क्लासेस सुनना, रोज चार्ट लिखना, रोज चिंतन करना, एकांत में जाना, सब कुछ करना, अमृत वेला, मुरली क्लास, परंतु वो जो पुराना जीवन था कई सालों पहले का, और उसकी जो यादें हैं वो अभी भी अचानक बीच में आ जाती है। दे आर वेरी पावरफुल। उसके सामने ये जो ज्ञान और योग ये सब धक से बह जाता है, क्योंकि उसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। एक है तर्क, एक है भाव, कौन सा स्ट्रांग है दोनों में से? एक है तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, जो हम अपने मन को समझाते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। जो एक टेररिस्ट है सोचता है ये करूं ये नहीं करूं, और फिर उसको लगता है टेररिज्म, दिस इज बैड, नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी अचानक वो कर देता है। इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग। व्यक्ति को समझता है कि यह श्रीमत है, यह श्रीमत नहीं है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परंतु दिन भर सोचते सोचते सोचते, जैसे वो दारू पीने वाला होता है, दिन भर चिंतन करता है कि यह दारू बहुत खराब है, नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीऊंगा आज से, पूरा मेरा परिवार इससे नष्ट हो रहा है, पर जैसे ही शाम होती है अपने आप मधुशाला की ओर कदम बढ़ने लगते हैं, अपने आप उसको ही समझ नहीं आता है क्या हो गया। दिन भर तो पूरा चिंतन किया नुकसान का, डिसएडवांटेजेस, शाम हुई वापस वहीं वापस आता है, और फिर दुख, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर दूसरे दिन फिर नया संकल्प करता है, फिर अपने मन को समझाता है, फिर सारा दिन, और फिर शाम होते ही वापस। इन दो चीजों को समझना है, लॉजिक, इमोशंस। जो व्यक्ति इमोशनली जिसमें इन्वॉल्व है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स बन जाता है उसके लिए, और जो लॉजिक के आधार पर इन्वॉल्व है। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में दो प्रकार की आत्माएं हैं, इस ब्राह्मण परिवार में टू टाइप्स ऑफ सोल्स, एक फिलोसोफर्स, एक मिस्टिक्स। हम कौन है दोनों में से? फिलोसोफर्स अर्थात तर्क, ये श्रीमत है ये श्रीमत नहीं है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, फिलोसोफर्स, बाबा ने ये कहा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये कहा क्यों कहा, क्या कारण है, फिलोसफी, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, बहुत शार्प है। एक तो ये कैटेगरी है फिलोसोफर्स की। दूसरे है मिस्टिक्स, दूसरे है रहस्यवादी जिसको कहते हैं, दूसरे है भगत जिसके भाव है, भावना है, उनको ये नहीं समझ में आता है बाप रे ये श्रीमत क्या है, ये क्या है, उनको प्यार है बस भगवान से, और वो प्यार के आधार पर सब करते हैं, उनके पूरे इमोशंस उसमें डूबे हुए हैं। वो एक दूसरा एक व्यक्ति है जो वक्ता है, जो फिलोसोफर है, जो भाषण वगैरह करते हैं, सब करते हैं, वो कभी कभी भूल भी सकता है, पर जो एक माता है बिचारी अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, मुरली पढ़नी भी नहीं आती है, पर उसको प्यार इतना है कि बस बाबा ही सब कुछ है, यहां गलती होने के चांसेस बहुत कम है। फिलोसोफर्स तो अपना ज्ञान भूल गया तो खत्म। जिसके लिए एक मुरली में बाबा ने कहा है, ज्यादा कई बच्चे हैं जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, इसके लिए कम समझदार भाव। भक्ति में कहा जाता है ज्ञान अज्ञान जो है वो अंधकार है, और ज्ञान महाअंधकार है, क्योंकि ज्ञान अपने साथ अहंकार को लाता है, मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये किया है, मुझे ये पता है, पहले मानो तुमको नहीं पता फिर मैं बताऊंगा क्या है। और कोई लोग ज्ञान में आने के बाद अपना अहंकार साथ साथ लेकर चलते हैं, कोर्स करा रहे हैं, परंतु ये भाव है कि हम जानते तुम नहीं जानते भगवान कौन है, मैं बताऊंगा अब तुमको भगवान कौन है, मैं बताऊंगा सृष्टि चक्र कैसा, ये सब रॉन्ग है शास्त्रों की बातें। तो ज्ञान तो दे रहे हैं पर साथ में अहंकार का भी पोषण हो रहा है कि मैं बताता हूं आत्मा क्या है, मैं बताता हूं परमात्मा क्या है, यह तुम्हारी सारी फिलॉसफी गलत है, अब सुनो पहले मैं क्या कहता हूं। साथ साथ दो चीजें चल रही है। तो इससे भी इस स्वयं को मुक्त करना है। फिलॉसफर बनना अच्छी बात है, परंतु जो भावनाएं हैं वो कम ना हो। दैट्स व्हाई गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद गॉड, इमोशनल लव अफेयर विद गॉड, इमोशंस डालने हैं उसमें, फिर वो भूलेगा नहीं। अभी तर्क ज्यादा है, तर्क अर्थात श्रीमत, यस नो, डूज डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, ये ज्यादा है, इसकी भी आवश्यकता है, बट दैट फिलोसफर दैट मिस्टिक्स हार्ट, एक भावुक व्यक्ति जो होता है ना, जो भक्ति में कितनी भावनाएं थी, ज्ञान में आने के बाद भावनाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि मुरली में बातें ही ऐसी आती है, तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है कुछ कुछ, परंतु उसको प्रिजर्व करके रखना है, दैट सेंसिटिव थ्रॉबिंग इमोशनल हार्ट। तो देह की कहां थे हम, स्मृतियां कितने हो गए, 9, 10वां आप बताओ, देह की क्या देह के अस्तित्व, कॉन्शियसनेस आ गया, देहभान देह अभिमान देह अहंकार, देह के देह का आकर्षण, दैहिक आकर्षण, गिराता है, कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई पतला कोई दुबला मोटा, यह दिखाई देता है और उसमें आकर्षण जाता है। जो जितना आत्मिक भाव में स्थित है उसके लिए यह देखना खत्म हो जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है कि कुछ विकारी लोग एक स्त्री का पीछा कर रहे हैं और महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए हैं, अर्ध आंखें खुली है, तो वो स्त्री वहां से भाग जाती है, वो लोग पीछे से आते हैं और उसको महात्मा बुद्ध को पूछते हैं, क्या आपने किसी स्त्री को यहां से भागते देखा, वो कहते कोई तो यहां से गया पर मुझे ये नहीं पता वो स्त्री थी या पुरुष, ये देखना मेरा बंद हो गया है, स्त्री है या पुरुष है, कोई तो गया है पर यहां से, कितना देह से डिटैचमेंट है। ये साधना आंतरिक है, एकांत में बैठकर स्वयं को। बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं, छोटी सी साधना है आत्मा की साधना। एक छोटा सा संकल्प, मैं आत्मा अविनाशी हूं, एक जगह बैठना, आधा घंटा तक इसी के ऊपर चिंतन करना, मैं आत्मा क्या हूं, अविनाशी हूं। छोटा सा संकल्प है, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे गीला नहीं कर सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। मन को संकल्प देने हैं। जितना जो इसका अभ्यास करेगा उतना स्थिर, नहीं तो मृत्यु भय पकड़ के रहता है, बीमारी का भय। ये बीमारी मुझे हो गई तो, शरीर छूट जाए तो। अच्छे अच्छे योगी हमने देखे हैं, बहुत योग का चार्ट, और अचानक एक दिन पता चला कैंसर, स्थिति हिल गई पूरी। अचानक एक दिन पता चला कैंसर लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जितनी ज्यादा हो रही है, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहां। और अनसर्टिनिटी और फियर और बेचैनी। योग गया, तपस्या गई, सब कुछ गया। उसके पहले एकदम अचरडोल थे, पर जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उसके बाद में हलचल चालू। जिस दिन फिर नए नए इन्वेस्टिगेशन रोज कराए जा रहे, पेट स्कैन, MRI, ये वो, हलचल चालू। फिर कीमोथेरेपी चालू हो रहा है, उसमें हलचल, सब खो गया। हां, कुछ कुछ ऐसी आत्माएं भी है जो एकदम अचल, एकदम स्थिर। अभी पिछले एक या दो साल में एक दो मधुबन निवासियों ने शरीर छोड़ा हॉस्पिटल में। दो ऐसे भाई थे वहां के जिनको इस तरह से कैंसर डायग्नोस हुआ, फिर एक हाथ कीमो चली और फिर बंद हो गया, टॉलरेट नहीं कर पाए, और फिर खाली पैलियोटी केयर। अवस्था इतनी ऊंची थी, बहुत ऊंची। एक भाई तो कहते थे कि बस, हम उनको पूछते थे कैसे है, तो कहते मैं तो ठीक हूं, प्रॉब्लम ये लोगों को है जो साथ में है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रॉब्लम है। मैं तो, अभी कैसे लग रहा है, कुछ नहीं, बस अभी जाकर छोटा बच्चा बनना है। यह अवस्था, जाकर छोटा बच्चा बनना है, कितनी मन की तैयारी कर रखी। दूसरे एक भाई थे जिनको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया था, और वो यूरिनरी ब्लैडर पूरा फंगेटिंग मास होके बाहर आ गया था, इतनी गंदी स्मेल दूर दूर तक, अगर यहां थे तो पूरा काउंटर तक, नर्सिंग काउंटर तक स्मेल इतना। परंतु उनकी भी अवस्था बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी अवस्था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भाषण नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाया, ये वो लोग थे जिन्हों अपने डिपार्टमेंट में बैठ के चुपचाप सेवा करते थे, किसी को पता भी नहीं होगा ये है, बाहर वालों को। परंतु आंतरी अंदर, अंदर ही आंतरिक पुरुषार्थ चालू था। पुरुषार्थ कौन सा? देह से स्वयं को दूर करना। तो जीना मरना तेरी गली में, मरना अर्थात इन दसों चीजों से मर जाना। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। ये मरण कैसा है? बहुत ही मीठा है। और हां, दूसरा अर्थ है इसका कि यदि वास्तव में मृत्यु आ भी जाए तो कैसी मृत्यु चाहेंगी माताएं? टॉपिक इतना अच्छा नहीं है, परंतु बाप तो कहते हैं मैं आया हूं सबको ले जाने। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, तुम सबके शरीरों को जलाकर मैं तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने ही तो मुझे बुलाया था, क्या याद है जब तुमने मुझे बुलाया था भक्ति मार्ग में? क्या तुमको ऐसा ख्याल था तुमने किसको बुलाया है? तुमने महाकाल को बुलाया है, अब मैं आया हूं। चलो, बुलाया था ना तुमने, तो मैं महाकाल हूं, अब ले जाने आया हूं। तो कैसी मृत्यु चाहेंगे? अभी माताएं सारी बताएंगे। पीसफुल एक, दूसरा मक्खन से जैसे बाल निकल जाए ऐसी मृत्यु, दूसरा, तीसरा भगवान की स्मृति में, तीसरा, चौथा बाप के साथ क्या भगवान की स्मृति बोल दिया, उमंग उत्साह से शरीर छोड़ना, चौथा पांचवा बाबा की नहीं कैसी मृत्यु चाहिए वो बताओ, मृत्यु हो तो कैसी हो, पांचवी ऑनर का क्या नहीं, मृत्यु की प्रैक्टिकल स्टेज पर पूछ रहे हैं हम, माइंड की स्टेज क्या होनी चाहिए, न्यारा हो डिटैच्ड, और छठवा नष्टो मोहा, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की याद नहीं, किसी की भी याद नहीं, बस एक उसकी, और संसार में किसी की याद नहीं, और एनी टाइम प्रेफरेंस, रुको भाइयों की तरफ से एनी टाइम प्रेफरेंस एंड डे प्रेफरेंस, हाँ अच्छा कर्म करते हुए, और दूसरा कि हाँ ये कितनी अच्छी पॉइंट है कि हमें किसी की सेवा लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही शरीर छोड़ दो बस ढक से, नहीं तो एक एक महीना तक आईसीयू और एक एक महीना तक वेंटिलेटर और फिर ये हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल, फिर एक कॉम्प्लिकेशन फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन, गए थे किस लिए और क्या क्या हो गया। एक मरीज था वो आया था, बहुत हंसी वाली बात है, जब हम मुंबई में थे नीचे आया था आंख का ऑपरेशन कराने, ठीक है हम सेवेंथ फ्लोर पे थे बीएसीएस में, आंख का ऑपरेशन कराने नीचे आया तो रूटीन टेस्ट में ईसीजी लिखा नीचे के डॉक्टर ने, तो हम लोग आईसीसीयू में थे ऊपर, तो उसको थोड़ा आईसीजी में गड़बड़ लगा तो उसने हमारे पास भेज दिया ईसीजी देखने के लिए, और फिर हमने देखा अरे ईसीजी में तो बहुत प्रॉब्लम है, कहां है पेशेंट ऊपर भेजो, तो उसकी बिल्कुल सुनी नहीं, और उसके रिलेटिव को कन्विंस करके पेशेंट सेवेंथ फ्लोर पे आ गया सीसीयू में, फिर उसको फटाफट हमने ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट ये चालू कर दिया वो चालू किया, बहुत सारा चालू किया, तीन दिन तक रहा, फिर उसका एंजियोग्राफी हुआ, एंजियोग्राफी हुआ तो पता चला एंजियोग्राफी में तो उसको ब्लॉकेजेस है पूरा, तो उसका तो बाईपास करना पड़ेगा, तो फिर वापस उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है रिश्तेदार से बातें चल रही है, तो रिश्तेदार कहते गो अहेड, तो उसका फिर बाईपास कर दिया, फिर बाईपास सर्जरी हुआ, फिर बाईपास सर्जरी के दूसरे दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ कुछ कारण से या कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी था तो री ऑपरेट करना पड़ा, तो री ऑपरेशन चला रिडू सर्जरी, और फिर सात दिन तक आईसीयू में था, फिर सब ठीक रहा, फिर वार्ड में शिफ्ट किया, फिर वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद छुट्टी हुई, तो फिर हम लोगों ने उनसे कहा आप सब ठीक है, वो बोलते ठीक तो मैं पहले ही था अभी आपको कुछ नहीं, अभी आप जा सकते हो, पर बोलते मेरे आग का क्या आग तो छोड़ो बाद में कर सकते हो वो कहते हैं मेरी आग मैं तो आया था आग के लिए हमने कहा आग बिल्कुल भूल जाओ, अभी ये खून को पतला करने की दवाई चालू है, जब तक वो बंद अभी यही चालू रहेगी, आग बाद में सोचना तुम तो और एनी डे प्रेफरेंस प्रश्न हम पूछ रहे थे भाइयों से, कैसी मृत्यु चाहिए जल्दी, मुरली सुनते सुनते शरीर छोड़ दो, वाह अमृत वाला टाइम बहुत बढ़िया है, और योग में है और शरीर छूट जाए, और एनी डे प्रेफरेंस सदगुरुवार या इंटरनेशनल योग संडे इंटरनेशनल योग अमृत वेला टाइम अमृत वेला ठीक है, अच्छा जगह स्थान स्थान प्लेस, एक तो मधुबन में कहा, मधुबन बहुत विशाल है, पांडव भवन में कहा, शांति स्तंभ में, और कोई एक माता बीच में हॉस्पिटल, बाबा से मिलने आए थे तो शांतिवन से ऊपर आए और शांति स्तंभ पर बैठी, पांच मिनट ही बैठी होगी, थोड़ा सा कमरे में गई और वहां पर ही अरेस्ट हो गया, हॉस्पिटल लेके आए तो ब्रॉड डेड, वहीं शरीर छोड़ दिया था, वहीं पे शरीर छोड़ दिया। बहुत सालों पहले एक मलेशिया की माता थी जो पांडव भवन में आई और अचानक एक दिन अमृत वेला उसको बेहोश सी हो गई, कन्वर्जेंस फीट्स आए, हॉस्पिटल लेके आए पर ऑलरेडी शी इमीडिएटली वेंटिलेटर और कुछ ही घंटों में शरीर छोड़ दिया उसने, इससे पहले कि कुछ पता चले क्या हुआ है। बहुत सारा कुछ करना पड़ा, CPR ये वो। बाद में उसके बेटा आया उधर से मलेशिया से वो सब, तो फिर पता चला कि वो कह रहा था कि मेरी मम्मी ने कहा ही था कि मैं मधुबन जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी, ये कह के गई थी माता कि मैं मधुबन जा रही हूं और वापस नहीं आऊंगी, एंड शी वॉज हेल्दी। तो मृत्यु ऐसी हो जैसे कि मौज, मृत्यु ऐसी हो जैसे आनंद, मृत्यु ऐसी हो खुशी खुशी, मृत्यु ऐसी हो नष्टो मोहा अवस्था, मृत्यु ऐसी हो कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, मृत्यु ऐसी हो परम संतोष कि जीवन में जो कुछ करना था कर दिया, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई पश्चाताप नहीं किसी से, मृत्यु ऐसी हो कि जिसमें सारे हिसाब किताब पूरे हो चुके हैं, इसके लिए हिसाब किताब अभी से सारे पूर्ण करना चालू कर देना। मृत्यु ऐसी हो कि जहां हम योग में हो, चाहे मधुबन में हो या यो हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई कहे कि मैं मधुबन पकड़ के रखता हूं ताकि मेरी मृत्यु मधुबन में हो। हमारे हॉस्पिटल के भाई थे एक, कितने सालों से हॉस्पिटल में थे, एक दिन कितने सालों के बाद गांव गए और वहां पर उनकी एक गाय थी, उस गाय को लेके जा रहे थे तो गाय ने सिंग मार दिया और मृत्यु हो गई। कैसा हिसाब किताब है, जानवरों से भी हिसाब किताब है और रह रहे मधुबन, तो जरूरी नहीं है मधुबन में रह गए मतलब मधुबन में मृत्यु होगी, और जरूरी नहीं कि यहां है तो मधुबन में नहीं होगी, कहीं पर भी हो सकती है। याद हो, स्थिति श्रेष्ठ हो, देह के आकर्षण में ना हो, वासना का वो क्षण ना हो, नहीं तो वैसा ही जन्म मिलेगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जीवन पर्यंत जिस चीज के लिए पश्चाताप किया था वो यही थी। उसके पिता मृत्युशैया पर थे, 11 बजे तक रात तक वो सेवा कर रहे थे, बाद में पत्नी की याद आई, अभी अभी शादी हुई थी, पत्नी के पास गए और 5 मिनट के अंदर मैसेज आया, पिता ने शरीर छोड़ दिया लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं अपने आप को माफी नहीं कर पाया कि मेरी इच्छा थी मैंने इतनी सेवा की अंतिम क्षण में वहां रहूं, पर वासना ने खींचा। तो हमारी मृत्यु ऐसे क्षण में ना हो, और कभी भी हो सकती है अचानक। यहां से अभी हम हैं, शाम को हम रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है गारंटी, कब कोई बॉम्ब कहां गिर जाए क्या पता, पंखा भी गिर जाए, कुछ भी गिर सकता है, ये कलयुग है, यहां कुछ भी हो सकता है। पंखा कल कहा है बाबा ने, वहां प्रकृति हवा करेगी, यहां तो ये पंखा है, गर्मी होती है, सहन करना पड़ता है यहां पर। तो मृत्यु की ये तैयारी है, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे मरना है यह भी एक कला है। डेथ शुड बी अ सेलिब्रेशन, नॉट सफरिंग, नॉट सॉरो, नॉट ग्रीफ, नॉट मिजरी, नॉट पेन। शरीर के हिसाब किताब चलते रहेंगे परंतु स्थिति बहुत ऊंची हो, इस अवस्था में मरना। और दूसरी बात है जीना तेरी गली में। लास्ट संडे मुरली था, यह जीवन कैसा है, मौजों का जीवन। इसमें कैसा है जीना, चलना मौज में, उठना मौज में, कर्म करना मौज में, सोना मौज में, नाचना गाना खुशी मनाना सब कुछ मौज। बेफिक्र बादशाह हो, फिक्र है नहीं, फिक्र से फारिग। उठो तो भगवान से बात करो, सो तो याद में, नींद में, उसकी गोद में, चलो तो वो हाथ में हाथ है और नीचे स्केटिंग है। बाबा ने कहा ना जैसे पहिए लगे होते हैं तो रफ्तार तेज होती है, दिस इज स्पिरिचुअल स्केटिंग। जो जिसमें श्रीमत रूपी पहिया नीचे हो, हाथ में उसका हाथ है, निमित्त भाव है और वो चला रहा है। चलना कर्म करना उसकी याद में, तो जीना कैसे, पूरी मुरली ही सारी जो है उसके ऊपर है। तो जीना भी उसकी याद में, मरना भी उसकी याद में, और एक मरना जो बताया ये 10 बातें हैं, उस पर काम करना है, हर एक को सोचना है कि कहां क्या कमी है, कौन सी बातें हैं, स्वयं सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग, आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन। इसके लिए एकांत चाहिए, इसके लिए मौन चाहिए। तो अभी हम इस क्लास को यहां पूरा करते, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। ओम शांति।